एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में मैं हूँ आपका मेजबान
और मैं हूँ आपकी सह मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाने वाली किताब पर बात करेंगे।
हाँ, सवाल ये कि क्या हमें वाकई एक मजबूत नेता की जरूरत है?
बिल्कुल। किताब है आची ब्राउन की द मिथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब मजबूत नेता का मिथक।
और ये किताब उस आम सोच को चुनौती देती है कि सबसे असरदार नेता वही होता है जो दबंग हो, सारे फैसले खुद करे
और किसी की सुने नहीं।
एग्जैक्टली।
और देखिए, आज के माहौल में तो ये और भी जरूरी हो गया है ना।
हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में ऐसे नेताओं की बात हो रही है जो अपनी मजबूती का दावा करते हैं।
तो ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में नेतृत्व में क्या ढूंढ रहे हैं।
तो चलिए इसी मिथक के गहराई में उतरते हैं, लेकिन पहले ये तो जाने कि आर्ची ब्राउन है कौन।
हाँ, आर्ची ब्राउन वो ब्रिटेन के एक बहुत ही सम्मानित राजनीति विज्ञानी और इतिहासकार हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं काफी लंबे समय तक।
अच्छा।
और उनकी खास बात सिर्फ ब्रिटिश राजनीति नहीं है, उनका नजरिया बहुत व्यापक है, तुलनात्मक है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने दशकों तक अलग अलग राजनीतिक सिस्टम्स देखे, मतलब पश्चिमी लोकतंत्र भी और
हाँ, और सोवियत संघ, चीन की कम्युनिस्ट प्रणालियां सब। सोवियत संघ के पतन पर, खासकर गोरबचेव की भूमिका पर, उनका काम तो मतलब मील का पत्थर माना जाता है।
अच्छा।
तो यही जो तुलनात्मक नजरिया है ना,
ला।
इसी से वो समझ पाते हैं कि लीडरशिप कोई एक चीज नहीं है। वो उन नेताओं के पैटर्न देख पाते हैं जिन्हें हम मजबूत कहते हैं, और फिर उनकी तुलना उनसे करते हैं कि शायद कम दिखते हों लेकिन ज्यादा सफल रहे हों।
और इसी अनुभव से वो इस मजबूत नेता वाले मिथक पर सवाल उठाते हैं।
बिल्कुल, यहीं से उनकी किताब की शुरुआत होती है।
तो इस किताब का फिर मूल विचार क्या है, क्या कहना चाहते हैं ब्राउन?
देखिए, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी सीधा है कि जिसे हम आम तौर पर मजबूत नेता समझते हैं, मतलब जो हावी रहता है, असहमति पसंद नहीं करता, सारी पावर अपने पास रखता है,
हाँ,
वो असल में नेतृत्व का सबसे अच्छा या सबसे प्रभावी मॉडल नहीं है।
अच्छा,
ब्राउन इसे एक मिथक कहते हैं, और एक खतरनाक मिथक।
खतरनाक मिथक। तो फिर अगर ये मजबूत नेता वाला मॉडल ठीक नहीं है तो फिर प्रभावी नेतृत्व कैसा होता है ब्राउन के हिसाब से?
ब्राउन इतिहास से ढेरों उदाहरण देते हैं। वो दिखाते हैं कि सबसे बड़े और पॉजिटिव बदलाव लाने वाली नेता अक्सर वो रहे हैं जिन्होंने सहयोग पर, सलाह मशवरे पर, आम सहमति बनाने पर जोर दिया। असली ताकत, वो कहते हैं, अपनी मर्जी थोपने में नहीं है,
बल्कि
बल्कि सुनने में, जिम्मेदारी सौंपने में, और पूरी टीम की जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करने में।
मतलब वो अकेले हीरो वाली छवि,
हाँ, जिसके पास सारे जवाब होते हैं, उस छवि को ये किताब तोड़ती है।
ये तो काफी दिलचस्प बात है। इसका मतलब नेतृत्व सिर्फ ऊपर से हुक्म चलाना नहीं हुआ।
नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ लेकर चलना हुआ।
तो चलिए अब किताब के विश्लेषण में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ब्राउन इस मिथक को तोड़ते कैसे हैं, क्या तरीका है उनका?
हाँ, तो वो शुरुआत करते हैं ये समझाते हुए कि इस मजबूत नेता के मिथक में आखिर है क्या क्या शामिल। जैसे एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी,
हाँ,
असहमति के लिए कोई जगह नहीं होना, अपनी ही समझ पर अटूट विश्वास, सत्ता का केंद्रीकरण।
और वो मीडिया और जनता की भूमिका पर भी बात करते हैं शायद।
हाँ, कि कैसे हम भी इस छवि को पसंद करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। फिर वो इतिहास की जो ग्रेट मैन थ्योरी है,
कि इतिहास सिर्फ कुछ महान लोग बनाते हैं,
हाँ, उसकी वो आलोचना करते हैं।
और फिर वो नेतृत्व को समझने का एक नया फ्रेमवर्क भी देते हैं, है ना? सिर्फ मजबूत बनाम कमजोर से आगे।
बिल्कुल, वो नेताओं को उनके असर के आधार पर तीन तरह से देखते हैं।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला, वो कहते हैं परिभाषित करने वाले,
रीडिफाइनिंग,
मतलब जो राजनीतिक सिस्टम को ही बुनियादी तौर पर बदल दें,
जैसे
जैसे फ्रांस में डीगॉल, या तुर्की में आतातुर्क, या चीन में डेंग शियाओपिंग, जिन्होंने पूरा आर्थिक मॉडल ही बदल दिया। और दूसरा
दूसरा है परिवर्तनकारी।
ट्रांसफॉर्मेशनल, ये वो नेता हैं जो मौजूदा सिस्टम में रहते हुए पॉलिसी और पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव लाते हैं, जैसे ब्रिटेन में थैचर, या अमेरिका में रूजवेल्ट, या फिर सोवियत संघ में गोबाचेव।
अच्छा।
लेकिन यहाँ ब्राउन एक चेतावनी भी देते हैं कि परिवर्तनकारी होना हमेशा अच्छा नहीं होता।
हाँ, वो हिटलर का उदाहरण देते हैं शायद।
बिल्कुल, हिटलर भी परिवर्तनकारी था लेकिन उसका असर भयानक था।
और तीसरी तरह के नेता?
वो है लेन देन वाले, ट्रांजैक्शनल और ये सबसे आम है। ये सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं, धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, बातचीत समझौते से स्थिरता बनाए रखते हैं।
आपने गॉर्बाचेव का नाम लिया, उनकी छवि तो काफी मिलीजुली है, खासकर रूस में। ब्राउन उन्हें परिवर्तनकारी क्यों मानते हैं, जबकि वो मजबूत नेता जैसे नहीं लगते थे?
यही तो ब्राउन का सबसे अहम पॉइंट है।
अच्छा,
गॉर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्त्रोइका यानी पुनर्गठन के जरिए क्या किया? उन्होंने बहस को बढ़ावा दिया, सत्ता को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की।
हाँ, ये तो मजबूत नेता वाली छवि के बिल्कुल उलट काम थे।
एग्जैक्टली, ब्राउन यही दिखाते हैं कि उनका जो परिवर्तनकारी असर था वो उनके दबदबे से नहीं आया, वो आया व्यवस्था को खोलने की उनकी कोशिश से।
अब आते हैं लोकतंत्र पर। लोकतंत्र में दबदबे वाले नेतृत्व के क्या खतरे हैं? ब्राउन यहाँ किन उदाहरणों पर फोकस करते हैं?
वो खास तौर पर ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर का विश्लेषण करते हैं। थैचर ने हाँ बड़े आर्थिक सुधार किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी ही कैबिनेट की न सुनने की उनकी जिद, खासकर वो पोल टैक्स वाला मुद्दा,
हाँ सुना है उसके बारे में,
वही उनके पतन का कारण बनी। उन्होंने अपने ही साथियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया।
और टोनी ब्लेयर, उनका क्या, इराक युद्ध का जिक्र है क्या?
हाँ बिल्कुल, ब्लेयर के जमाने की सोफा गवर्नमेंट का उदाहरण दिया जाता है।
सोफा गवर्नमेंट मतलब?
मतलब ये कि बड़े बड़े फैसले जैसे इराक युद्ध में जाने का फैसला, वो फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग में नहीं हुए,
तो फिर कहाँ हुए?
वो प्रधानमंत्री और उनके कुछ खास सलाहकारों की अनौपचारिक बैठकों में, मतलब सोफे पे बैठकर तय हो गए।
ओहो,
तो ब्राउन इसे एक उदाहरण मानते हैं कि कैसे आप संस्थागत प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर इतने बड़े विनाशकारी फैसले ले लेते हैं।
और यहीं पर वो ग्रुप थिंग का खतरा भी आता होगा।
बिल्कुल, जब सब एक ही तरह से सोचने लगते हैं, कोई अलग आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेता को असहमति पसंद नहीं है।
लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सहयोगी नेतृत्व हमेशा काम करता है? क्या उसमें धीमी गति या मतलब फैसला न ले पाने का खतरा नहीं होता, खासकर संकट के समय?
हाँ, ये एक वाजिब सवाल है और ब्राउन इसकी तुलना करते हैं क्लेमेंट एटली से।
एटली, वो चर्चिल के बाद वाले प्रधानमंत्री?
हाँ वही, एटली को अक्सर शांत माना जाता था, उनमें चर्चिल जैसा करिश्मा नहीं था, लेकिन उनकी सरकार ने ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े सामाजिक बदलाव किए। सबसे बड़ा उदाहरण है NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा काम था।
और ये उन्होंने कैसे किया? किसी दबदबे से नहीं, बल्कि एक मजबूत कैबिनेट को साथ लेकर, बहस करके, सहमति बनाकर।
अच्छा,
तो ब्राउन का तर्क ये है कि एटली का मॉडल शायद कम फ्लैशी था, कम नाटकीय था, लेकिन ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद साबित हुआ। ये दिखाता है कि सहयोग से लिए गए फैसले ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, भले उनमें वक्त लगे।
ये तो ही लोकतंत्र की बात। अब तानाशाही व्यवस्थाओं पर आते हैं, वहां के बारे में ब्राउन क्या कहते हैं? वहां तो मजबूत नेता का ही बोलबाला होता है ना, है ना?
हाँ, और यहाँ ब्राउन का विश्लेषण और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में जहाँ थोड़ी बहुत रोक टोक होती है, तब भी अनियंत्रित शक्ति खतरनाक है।
तो तानाशाही में तो पूछिए ही मत।
बिल्कुल, जहाँ कोई रोक टोक ही नहीं है, वहां तो ये विनाशकारी है। हिटलर, स्टालिन, माओ, ये सब चरम उदाहरण है।
हाँ, उनकी असीमित शक्ति और असहमति के लिए जीरो टॉलरेंस,
उसी ने लाखों लोगों की मौत, युद्ध, भुखमरी को जन्म दिया।
लेकिन क्या तानाशाही में भी कुछ बारीकियां हो सकती हैं?
हाँ, ब्राउन यहाँ भी थोड़ा गहराई में जाते हैं। जैसे वो चीन में माओ के उस विनाशकारी दौर के बाद डेंग शाओपिंग का उदाहरण देते हैं।
डेंग का? वो कैसे?
डेंग हालांकि वो सुप्रीम लीडर थे, फिर भी उन्होंने माओ की गलतियों से बचने के लिए एक तरह से सामूहिक नेतृत्व और रिटायरमेंट के नियमों को बढ़ावा देने की कोशिश की,
क्यों?
ताकि सत्ता फिर से एक ही व्यक्ति के हाथ में बेलगाम न हो जाए। तो ये दिखाता है कि तानाशाही सिस्टम के अंदर भी नेतृत्व के मॉडल अलग अलग हो सकते हैं और उनके नतीजे भी।
तो इन सब उदाहरणों और विश्लेषण के बाद ब्राउन आखिर किस तरह के नेतृत्व को बेहतर मानते हैं, किसकी वकालत करते हैं?
वो बहुत स्पष्ट रूप से सहयोगी यानी कोलिजियल नेतृत्व की वकालत करती हैं। वो आइजनहावर जैसे नेताओं का जिक्र करते हैं जो सलाह मशवरे पे बहुत निर्भर थे।
और मंडेला का भी नाम आता है शायद।
हाँ, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने सुलह और सबको साथ लेकर फैसले करने को अपनी पहचान बनाया। असल में ब्राउन ताकत की परिभाषा ही बदल देती हैं।
वो कैसे, मतलब ताकत क्या है फिर?
उनके हिसाब से अच्छे नेताओं के जो गुण हैं, वो अक्सर इस मजबूत छवि के बिल्कुल उलट होते हैं।
जैसे कि?
जैसे सीखने की इच्छा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, अलग अलग राय जानने की उत्सुकता, अपनी गलती मानने का साहस, मतलब विनम्रता,
हाँ विनम्रता,
सहानुभूति और सबसे जरूरी संस्थाओं के प्रति सम्मान।
तो निष्कर्ष ये है कि हमें नेताओं को आंकने का पैमाना बदलना होगा।
बिल्कुल, किसी मसीहा या चमत्कारी नेता के बजाय हमें कुशल नेगोशिएटर, सहमति बनाने वाले टीम प्लेयर की तलाश करनी चाहिए।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं संक्षेप में?
हाँ देखिए, पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जिसे हम आम तौर पर मजबूत नेतृत्व कहते हैं, मतलब हावी होना, अड़े रहना, वो परिभाषा ही भ्रामक है।
अच्छा,
असली ताकत सहयोग में है, सुनने में है और विनम्रता में है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, सहयोगी बनाम दबदबे वाले नेतृत्व का फर्क, और सबूत यही दिखाते हैं कि सहयोगी शैली भले ही कम आकर्षक लगे, लंबे समय में ज्यादा बेहतर नीतियां बनाती है और बड़ी विनाशकारी गलतियों से बचाती है।
इटली का एनएचएस वाला उदाहरण फिर से याद आता है।
बिल्कुल, वो क्लासिक केस है।
तीसरा पॉइंट?
तीसरा, संस्थाओं और सीमाओं का महत्व, जिन्हें मजबूत नेता अक्सर बाधा मानते हैं, रुकावट समझते हैं।
हाँ,
पर ब्राउन कहते हैं कि ये बाधाएं नहीं हैं, ये अहंकार और बड़ी गलतियों के खिलाफ जरूरी सुरक्षा कवच है, गार्डरेल्स हैं।
और ये बात तो हमारे यहाँ भारत में भी बहुत अहम है ना, हम अक्सर बात करते हैं मजबूत संस्थाओं की, प्रक्रियाओं की।
बिल्कुल, जब नेता संस्थाओं को कमजोर करते हैं तो वो पूरे सिस्टम को ही जोखिम में डाल देते हैं।
चौथा पॉइंट क्या है?
चौथा, अहंकार और सत्ता का जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, इसके खतरे।
हाँ, ग्रुप थिंक वाली बात।
हाँ, जब एक ही व्यक्ति या उसके कुछ वफादार साथी ही सारे फैसले करते हैं तो ग्रुप थिंक बढ़ता है, जो असहज करने वाले सच हैं वो छिप जाते हैं।
और नेता जमीनी हकीकत से कट जाता है। थाचर का पोल टैक्स फिर से एक उदाहरण।
बिल्कुल, और एक आखिरी बात जो ब्राउन कहते हैं वो ये कि संसदीय प्रणालियां, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स,
हाँ,
जहां प्रधानमंत्री को कैबिनेट का साथ लेके चलना होता है, वो अक्सर सहयोग को बढ़ावा देने में अध्यक्षीय प्रणालियों यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स से बेहतर होती हैं।
अच्छा, जहां शक्ति ज्यादा केंद्रित हो सकती है।
हाँ, तो ये सारे बिंदु हमें अपने आसपास के नेतृत्व को, चाहे वो हमारे दफ्तर में हो या देश में, एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी होंगे जो दिमाग में रह जाते हैं, कुछ खास बातें साझा कर सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य विचारों को हम ऐसे समझ सकते हैं जो किताब के सार को पकड़ते हैं। पहला तो यही,
बताइए।
ये मानना कि मजबूत नेता जो सहयोगियों और संस्थाओं पर हावी हों ही सबसे सफल होते हैं, एक व्यापक और खतरनाक मिथक है। सबसे फायदेमंद और बड़े राजनीतिक बदलाव अक्सर सामूहिक और सहयोगी नेतृत्व से आए हैं।
ये तो किताब का बिल्कुल निचोड़ है।
हाँ, दूसरा विचार है, किसी नेता का अपने सहयोगियों के तर्कों को सुनना और उनसे सहमत होना असली ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अहंकार और खुद को अचूक समझना राजनीतिक तबाही की पहली सीढ़ी है।
ये वाकई सोचने वाली बात है, हम अक्सर असहमति जताने को या सुनने को कमजोरी समझ लेते हैं।
बिल्कुल, तीसरा विचार संस्थाओं पर है।
क्या है वो?
राजनीतिक संस्थाएं किसी महान नेता की इच्छा शक्ति के रास्ते में आने वाली बाधाएं नहीं है, वे समाज को किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से बचाने वाली जरूरी रेलिंग है। जो नेता इन्हें कमजोर करते हैं वे अपने देश को खतरे में डालते हैं।
ये प्रक्रियाओं और सिस्टम के महत्व पर जोर देता है।
हाँ, और चौथा जो हमारी उम्मीदों से जुड़ा है, हमें दुनिया बदलने का वादा करने वाले परिवर्तनकारी नेता से कम चकाचौंध होना चाहिए और जटिलताओं को कुशलता से संभालने वाले, लेन देन वाले नेता की ज्यादा सराहना करनी चाहिए। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व सबसे कम आकर्षक होता है।
ये सारी विचार हमें चुनौती देते हैं कि हम नेताओं से क्या उम्मीद करें और किसे प्रभावी माने। तो फिर इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ, कैसे लागू करें इन्हें?
देखिए, कई स्तरों पर इसका मतलब है। सबसे पहले तो नागरिकों और वोटरों के लिए।
हाँ, उनके लिए क्या है इसमें?
ये किताब एक तरह से पॉलिटिकल लिटरेसी टूल है कि सिर्फ नारों और करिश्मे से आगे देखो, उम्मीदवार का स्वभाव देखो, वो दूसरों के साथ कैसे काम करता है, क्या वो विरोधी विचारों का सम्मान करता है, उसकी नीतिगत समझ कैसी है, इन सब पर ध्यान दो।
और जो कहे कि सिर्फ मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ,
हाँ, उस पर ब्राउन के नजरिए से जरूर सोचना चाहिए।
ठीक है, और काम की जगह पर? मतलब दफ्तरों में, संगठनों में?
अरे वहाँ तो ये सिद्धांत सीधे सीधे लागू होते हैं। ये उस टॉप डाउन बॉस के खिलाफ एक तर्क है जो समझता है कि मेरा कहा ही कानून है।
हाँ।
एक अच्छा मैनेजर या लीडर वो है जो खुली बहस को बढ़ावा दे, जहाँ टीम के लोग बिना डरे अपनी राय रख सकें, अपनी असहमति जता सकें,
जहाँ गलतियां स्वीकार की जा सके और उनसे सीखा जा सके।
बिल्कुल, और जहाँ फैसले पूरी टीम की विशेषज्ञता से लिए जाएं, न कि सिर्फ बॉस की मर्जी से। ऐसा माहौल न सिर्फ बेहतर नतीजे देता है, बल्कि कर्मचारियों को ज्यादा सशक्त भी महसूस कराता है।
तो मतलब नेतृत्व सिर्फ कोई पद नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक रवैया है, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो या देश।
बिल्कुल सही।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये थी कि एटली जैसे शांत दिखने वाले नेता थैचर जैसे दबंग नेता से ज्यादा प्रभावी और स्थायी बदलाव लाने में सफल रहे।
हाँ,
ये हमारी मजबूती की जो धारणा है ना, उस पर सच में सवाल उठाता है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि संस्थाएं और प्रक्रियाएं कितनी जरूरी हैं। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है,
बल्कि
ये शक्ति को संतुलित रखने और बड़ी गलतियों से बचाने का एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। किसी एक व्यक्ति के करिश्मे या व्यक्तित्व से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मजबूत जवाबदेह व्यवस्था का होना।
तो चलिए आज के इस ज्ञानोष्ठी को यहीं समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरूर।
अगर नेतृत्व का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना और हावी होना नहीं है, तो हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे काम की जगहों पर हम असली प्रभावी और सहयोगी नेतृत्व को कैसे पहचानें, और उससे भी जरूरी, उसे कैसे बढ़ावा दें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।